एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है, सभी सुनने वालों का स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब की दुनिया में गोता लगा रहे हैं जिसने विज्ञान, खासकर केमिस्ट्री को देखने का नजरिया ही कह सकते हैं बदल दिया।
हाँ बिल्कुल, और ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक पूरा विचार है पीटर एटकिंस की बहुत मशहूर फिजिकल केमिस्ट्री। अब नाम सुनने में शायद थोड़ा एकेडमिक सा लगे, भारी लगे।
हाँ लगता तो है,
पर यकीन मानिए इसके जो सिद्धांत है ना, वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से बहुत गहरे जुड़े हुए हैं।
हाँ, क्योंकि ये किताब सिर्फ केमिस्ट्री के छात्रों के लिए ही नहीं है, ये असल में हर उस इंसान के लिए है जो ये समझना चाहता है कि भाई हमारे चारों ओर की दुनिया, ये हवा, पानी, खाना, यहाँ तक कि हमारा अपना शरीर, ये मॉलिक्यूलर लेवल पर, मतलब आणविक स्तर पर कैसे काम करते हैं।
एग्जैक्टली, कैसे चीजें बनती हैं, कैसे बदलती हैं, ऊर्जा कहाँ से आती है, कहाँ जाती है, ये सब।
और आज के जमाने में तो ये समझना और भी जरूरी हो गया है, मुझे लगता है।
बिल्कुल, चाहे वो नई दवाएं बनानी हो, या बेहतर सोलर पैनल डिजाइन करने हो, या फिर क्लाइमेट चेंज जैसी जो बड़ी चुनौतियां हैं,
हाँ,
उनसे निपटना हो, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं फिजिकल केमिस्ट्री के ही सिद्धांत काम कर रहे होते हैं। तो चलिए आज इसी ज्ञान के खजाने से कुछ मोती निकालते हैं। तो कौन है इस इतनी प्रभावशाली किताब के पीछे? पीटर विलियम एटकिंस। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री के पूर्व प्रोफेसर रहे हैं और लिंकन कॉलेज के फेलो भी, लेकिन सिर्फ प्रोफेसर कहना शायद उनके साथ पूरी तरह न्याय नहीं होगा।
नहीं, बिल्कुल नहीं।
वो विज्ञान के, मैं कहूंगी, बेहतरीन कहानीकारों में से एक है।
सही कहा, उनकी सबसे बड़ी खासियत ही यही है कि वो बहुत मुश्किल और गणितीय लगने वाली बातों को भी बड़े ही साफ, सरल और दिलचस्प तरीके से समझा देते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई उलझी हुई कहानी को सुलझाकर सुना रहा हो। उनका लिखने का जो अंदाज है वो बहुत सुरुचिपूर्ण है, एलिगेंट जिसे कहते हैं।
बिल्कुल, और शायद इसीलिए उनकी किताबें और खासकर फिजिकल केमिस्ट्री दुनिया भर में इतनी पसंद की जाती हैं। कई भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है। उन्होंने वैसे 70 से ज्यादा किताबें लिखी हैं।
ओह वाओ, 70 से ज्यादा।
हाँ, जिनमें आम लोगों के लिए विज्ञान को आसान बनाने वाली किताबें भी शामिल हैं। उनकी जो एकेडमिक बैकग्राउंड है वो सैद्धांतिक रसायन विज्ञान और आणविक क्वांटम यांत्रिकी में है, तो ये उन्हें इस विषय पर लिखने के लिए एक बहुत गहरी और एक यूनिक समझ देती है।
और मुझे लगता है यही समझ उन्हें ब्रेरित की बारीकियों और जो सहज ज्ञान होता है इंट्यूशन, उसके बीच एक बढ़िया बैलेंस बनाने में मदद करती है। वो सिर्फ ये नहीं बताते कि क्या होता है, बल्कि इस पर ज्यादा जोर देते हैं कि क्यों और कैसे होता है, और वहीं से आई थिंक सीखने का असली मजा शुरू होता है। तो आखिर ये किताब है किस बारे में? अगर आसान शब्दों में कहें तो फिजिकल केमिस्ट्री उन बुनियादी फंडामेंटल भौतिक नियमों की पड़ताल करती है जिनके आधार पर पदार्थ का व्यवहार, केमिकल बदलाव और ऊर्जा का लेन देन टिका हुआ है।
हाँ,
ये किताब एक तरह से केमिस्ट्री से रहस्य का पर्दा हटाकर उसे फिजिक्स के ठोस नियमों पर आधारित दिखाती है, खासतौर पर थर्मोडायनेमिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स और काइनेटिक्स।
हाँ, मतलब किताब का जो कोर आइडिया है वो ये है कि केमिस्ट्री सिर्फ प्रयोगों का या कौन सी चीज मिलाने से क्या बनेगा, बस इसका लेखा जोखा नहीं है।
सही।
बल्कि ये एक ऐसा विज्ञान है जिसमें हम फिजिकल लॉज का इस्तेमाल करके भविष्यवाणी कर सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं, नाप सकते हैं और यहाँ तक कि कंट्रोल भी कर सकते हैं। ये किताब उस बड़े सवाल का जवाब देने की कोशिश करती है, आखिर केमिकल प्रक्रियाएं होती ही क्यों हैं और कैसे होती हैं।
और इस बड़े सवाल को समझने के लिए एटकिंस इसे तीन हिस्सों में तोड़ते हैं, तीन छोटे मगर बहुत जरूरी सवाल। पहला, क्या कोई रिएक्शन या बदलाव अपने आप होगा, मतलब स्पॉन्टेनियसली? क्या यह संभव भी है? यह है थर्मोडायनेमिक्स का एरिया जो एनर्जी, स्टेबिलिटी और इक्विलिब्रियम से जुड़ा है।
ठीक है।
दूसरा, अच्छा अगर होगा तो जिन परमाणुओं और अणुओं से ये हो रहा है उनकी बनावट कैसी है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, वो दिखते कैसे हैं? ये क्वांटम मैकेनिक्स का डोमेन है जो हमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स की अंदरूनी दुनिया की सैर कराता है।
इंटरेस्टिंग।
और तीसरा, अगर रिएक्शन होगा तो कितनी तेजी से होगा, उसकी स्पीड क्या होगी और किस रास्ते से, मतलब स्टेप बाय स्टेप कैसे होगा, उसका मैकेनिज्म क्या है, ये है केमिकल काइनेटिक्स का काम, रफ्तार और रास्ता।
तो ये किताब हमें एक तरह के सफर पर ले जाती है, बड़ी दिखने वाली दुनिया जिसे हम मैक्रोस्कोपिक कहते हैं, वहां से लेकर बहुत छोटी अनदेखी दुनिया, माइक्रोस्कोपिक यानी एटम्स और मॉलिक्यूल्स की दुनिया तक, और फिर वापस। ये दिखाती है कि कैसे उन छोटे कणों का बिहेवियर हमारी बड़ी दुनिया के गुणों को तय करता है। ये केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंजीनियरिंग के छात्रों और प्रोफेशनल्स के लिए तो खैर जरूरी है ही, पर मुझे लगता है ये किसी भी जिज्ञासु मन के लिए फायदेमंद है जो दुनिया को थोड़ा गहराई से समझना चाहता है।
बिल्कुल। चलिए अब किताब के पन्नों को थोड़ा और पलटते हैं और इन तीन बड़े हिस्सों को जरा करीब से देखते हैं। पहला भाग है साम्यावस्था यानी इक्विलिब्रियम, यानी ऊष्मा गतिकी या थर्मोडायनामिक्स के सिद्धांत। ये पूछता है क्या ये होगा।
हाँ, और इसकी शुरुआत अक्सर गैसों के गुणों से होती है। अब सवाल उठता है भाई, गैसें ही क्यों?
हाँ, क्यों?
क्योंकि गैसें, कह सकते हैं, सबसे सीधी साधी होती हैं समझने के लिए। उनसे हम प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर जैसी जो बेसिक चीजें हैं उन्हें आसानी से समझ सकते हैं। वो आइडियल गैस लॉ, पीवी बराबर एनआरटी, तो शायद स्कूल में भी सुना होगा सबने।
सुना है, हाँ।
पर एटकिंस फिर बताते हैं कि देखो, असली गैसें आइडियल नहीं होती। उनके अणु जगह भी घेरते हैं और एक दूसरे को थोड़ा बहुत खींचते भी हैं, तो वहां से रियल वर्ल्ड की समझ शुरू होती है।
फिर आता है थर्मोडायनेमिक्स का पहला नियम, फर्स्ट लॉ। ये सुनने में बड़ा भारी लगता है, पर असल में ये बस इतना कहता है कि ऊर्जा, एनर्जी, न तो पैदा की जा सकती है न खत्म।
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी,
है ना? यहां हम इंटरनल एनर्जी यू, हीट क्यू और वर्क डब्ल्यू जैसी चीजों को समझते हैं, और एक टर्म आती है एंथैल्पी एच। ये खासकर केमिस्ट्री लैब के लिए बहुत काम की है, क्योंकि ये बताती है कि कांस्टेंट प्रेशर पर किसी रिएक्शन में कितनी हीट निकली या लगी।
ठीक है, तो एनर्जी कंजर्व रहती है, ये समझ आया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। फिर आते हैं दूसरा और तीसरा नियम, सेकेंड एंड थर्ड लॉ, और यही चीजें मैं कहूंगी और भी दिलचस्प हो जाती हैं। दूसरा नियम हमें एंट्रोपी यानी एस से मिलवाता है। अब अक्सर लोग इसे अव्यवस्था या बिखराव या डिसऑर्डर कह देते हैं,
कॉमनली यही कहते हैं,
पर एटकिंस इसे ज्यादा सटीक तरीके से ऊर्जा के फैलने की माप, मेजर ऑफ एनर्जी डिस्पर्सल बताते हैं। सोचिए, जैसे पानी में स्याही की एक बूंद डाले तो वो फैल जाती है, एक जगह सिमटी नहीं रहती। ऊर्जा भी कुछ ऐसे ही फैलना चाहती है। ये नियम कहता है कि यूनिवर्स में हर वो चीज जो अपने आप होती है स्पॉन्टेनियसली, वो टोटल एंट्रोपी को यानी ऊर्जा के फैलाव को बढ़ाती है। ये नेचर का एक फंडामेंटल झुकाव है।
वाह।
और तीसरा नियम बस एंट्रोपी के लिए एक शुरुआती बिंदु, एक जीरो पॉइंट तय करता है।
हाँ, और इन सब नियमों को मिला के एक चीज बनती है जो शायद फिजिकल केमिस्ट्री की सबसे, कह सकते हैं, ताकतवर चीज है, गिब्स मुक्त ऊर्जा, गिब्स फ्री एनर्जी, जी। इसका फॉर्मूला है डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच टी डेल्टा एस। ये समीकरण किसी रिएक्शन का जज है।
जज है, बिल्कुल।
ये बताता है कि कोई रिएक्शन अपने आप होगा या नहीं। ये दो ताकतों के बीच का बैलेंस दिखाता है। एक तरफ सिस्टम की कम से कम एनर्जी डेल्टा एच में रहने की चाहत, और दूसरी तरफ ज्यादा से ज्यादा एंट्रोपी टी डेल्टा एस यानी एनर्जी फैलाने की चाहत। और तापमान टी इस बैलेंस में एक अहम खिलाड़ी है। इसी डेल्टा जी से हम समझते हैं कि बर्फ क्यों पिघलती है, पानी क्यों उबलता है, या कोई केमिकल रिएक्शन किस दिशा में जाएगा।
बिल्कुल। तो थर्मोडायनामिक्स ने हमें ये तो बता दिया कि क्या कोई प्रक्रिया संभव है, स्पॉन्टेनियस है या नहीं, लेकिन ये कैसे संभव है, इसके लिए हमें उतरना होगा अणुओं की दुनिया में, मॉलिक्यूलर लेवल पर। यही आता है किताब का दूसरा बड़ा भाग, संरचना, स्ट्रक्चर, यानी क्वांटम यांत्रिकी या क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांत। ये पूछता है अणु दिखते कैसे हैं और ऐसे क्यों दिखते हैं।
और ये दुनिया थोड़ी अजीब है। इसकी शुरुआत होती है क्वांटम सिद्धांत के जन्म से। एटकिंस बताते हैं कि कैसे पुरानी क्लासिकल फिजिक्स एटम्स और मॉलिक्यूल्स के व्यवहार को समझाने में नाकाम रही। फिर आते हैं प्लैंक, आइंस्टाइन, डी ब्रोगली जैसे वैज्ञानिक अपने क्रांतिकारी आइडियाज के साथ कि भाई ऊर्जा छोटे छोटे पैकेट क्वांटा में आती है, प्रकाश कण यानी फोटोन की तरह भी बर्ताव करता है, और कण जैसे इलेक्ट्रॉन वो लहरों की तरह भी, वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी। ये सब सुनने में थोड़ा दिमाग घुमाने वाला लगता है।
हाँ, बिल्कुल, क्योंकि ये क्वांटम दुनिया हमारे रोजमर्रा के अनुभवों से बहुत अलग है। और इस दुनिया का जो मुख्य नियम है वो है श्रोडिंगर समीकरण। जैसे न्यूटन के नियम बड़ी चीजों की गति बताते हैं, वैसे ही श्रोडिंगर समीकरण बहुत छोटी चीजों जैसे इलेक्ट्रॉन का व्यवहार बताता है। लेकिन एक बड़ा फर्क है।
क्या फर्क?
ये समीकरण हमें ठीक ठीक ये नहीं बताता कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है, बल्कि एक वेव फंक्शन psi देता है, और इस वेव फंक्शन का वर्ग
साइज स्क्वायर हमें ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन के किसी खास जगह पर पाए जाने की संभावना कितनी है, प्रोबेबिलिटी। निश्चितता की जगह संभावना। यही हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत भी आता है कि हम एक ही समय पर इलेक्ट्रॉन की सटीक स्थिति और उसका सटीक मोमेंटम दोनों नहीं जान सकते।
रुको, मतलब इलेक्ट्रॉन एक फिक्स जगह पर नहीं होता, बस उसके होने की संभावना होती है। ये तो वाकई बहुत अजीब है।
हाँ, अजीब तो है, पर यही क्वांटम दुनिया की हकीकत है। और एटकिंस की खूबी यही है कि वो इस अजीब दुनिया को भी बहुत लॉजिक और गणित से समझाते हैं। इसे समझने के लिए वो पार्टिकल इन अ बॉक्स जैसे सिंपल मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। सोचिए, एक कण को डब्बे में बंद कर दिया। ये मॉडल खूबसूरती से दिखाता है कि कैसे सीमाएं, कन्फाइनमेंट लगाने से ऊर्जा सिर्फ कुछ खास मान ही ले सकती है, लगातार नहीं बदल सकती। इसे कहते हैं ऊर्जा का क्वांटमीकरण, क्वांटाइजेशन।
अच्छा।
और इसका सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है हाइड्रोजन परमाणु के लिए श्रोडिंगर समीकरण को हल करना। इससे वो जाने पहचाने परमाणु ऑर्बिटल्स SPDF और क्वांटम नंबर अपने आप गणित से निकल आते हैं। ये रटे रटाए नहीं है, ये मैथ्स का नतीजा है जो पूरी केमिस्ट्री की नींव है। ये ऑर्बिटल्स एक तरह से इलेक्ट्रॉन के पते या इलाके हैं परमाणु के अंदर।
अच्छा, तो ये ऑर्बिटल्स हमें बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन परमाणु में कहाँ रहते हैं या पाए जाने की संभावना है। फिर अणु कैसे बनते हैं, मतलब परमाणु जुड़ते कैसे हैं?
बहुत अच्छा सवाल है। इसके बाद एटकिंस बताते हैं कि कैसे परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं, यानी केमिकल बॉन्डिंग। दो मुख्य थियरीज आती हैं। एक है वैलेंस बॉन्ड, VB थियरी। ये सोचती है कि परमाणु अपने ऑर्बिटल्स को ओवरलैप करके, शेयर करके एक तरह से हाथ मिलाते हैं। इससे हमें अणुओं के आकार, उनकी ज्योमेट्री का अंदाजा लगता है। और दूसरी जो ज्यादा शक्तिशाली है वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। ये मानती है कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ दो परमाणुओं के बीच नहीं बंधे रहते, बल्कि वो पूरे अणु में कहीं भी घूम सकते हैं, डीलोकलाइज्ड होते हैं। ये थ्योरी कुछ चीजों को बेहतर समझाती है, जैसे ऑक्सीजन अणु पैरामैग्नेटिक क्यों होता है, मतलब चुंबक की तरफ क्यों खिंचता है।
ओके।
और आखिर में स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये एक तरह से अणुओं का एक्सरे या अल्ट्रासाउंड समझ लीजिए। प्रकाश या दूसरी तरंगों का इस्तेमाल करके हम अणुओं की बनावट, उनके बॉन्ड की लंबाई, उनकी वाइब्रेशंस वगैरह के बारे में बहुत सटीक जानकारी हासिल करते हैं। ये क्वांटम मैकेनिक्स का जीता जागता एक्सपेरिमेंटल सबूत है।
वाह, तो अब हमने जान लिया कि क्या संभव है थर्मोडायनेमिक्स से और अणु कैसे बने हैं और क्यों क्वांटम मैकेनिक्स से। पर एक सवाल अभी बाकी है, अगर कोई रिएक्शन संभव है तो वो होगा कितनी तेजी से। यही आता है किताब का तीसरा और अंतिम भाग, परिवर्तन, चेंज, यानी रासायनिक गतिकी या केमिकल काइनेटिक्स के सिद्धांत। ये पूछता है कितनी तेजी से और कैसे।
बिल्कुल, ये हिस्सा हमें बताता है कि केमिकल बदलाव समय के साथ कैसे होते हैं। इसकी शुरुआत होती है रिएक्शन की रफ्तार यानी रेट को नापने और उसे गणितीय रूप में लिखने से। इसे रेट लॉ कहते हैं। इसमें रिएक्शन की कोटि, ऑर्डर, रेट कांस्टेंट जैसी चीजें आती हैं। और एक जरूरी बात, एटकिंस बताते हैं रेट लॉ सिर्फ प्रयोगों से, एक्सपेरिमेंट से ही पता चलता है। आप सिर्फ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन देखकर रेट लॉ नहीं बता सकते।
अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है। और फिर बात आती है रिएक्शन मैकेनिज्म की, मतलब रिएक्शन असल में होता कैसे, स्टेप बाय स्टेप। ज्यादातर रिएक्शन एक झटके में नहीं होते, बल्कि कई छोटे छोटे स्टेप्स की एक सीरीज में होते हैं।
हाँ,
इनमें से जो सबसे धीमा स्टेप होता है वही पूरी रिएक्शन की ओवरऑल रफ्तार तय करता है, उसे रेट डिटर्मिनिंग स्टेप कहते हैं। जैसे किसी हाईवे पे अगर एक जगह जाम लगा हो तो पूरी यात्रा की रफ्तार वही जाम तय करता है, बाकी रास्ते आप भले ही तेज चला लें।
बिल्कुल सही उदाहरण है। और तापमान का रिएक्शन की रफ्तार पर बहुत गहरा असर पड़ता है। गर्मी बढ़ाने से ज्यादातर रिएक्शन तेज हो जाते हैं। इसे आर्हेनियस समीकरण से समझाते हैं, जिससे एक्टिवेशन एनर्जी EA का कॉन्सेप्ट सामने आता है। सोचिए, रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट बनने के लिए एक एनर्जी की पहाड़ी पार करनी पड़ती है। एक्टिवेशन एनर्जी उस पहाड़ी की ऊंचाई है, जितनी ऊंची पहाड़ी उतनी धीमी रिएक्शन।
तो इस पहाड़ी को पार कैसे किया जाता है, क्या तरीके हैं?
इसके लिए दो मुख्य मॉडल या थ्योरीज हैं। एक है टक्कर सिद्धांत, कोलिजन थ्योरी। ये कहता है कि मॉलिक्यूल्स को आपस में टकराना पड़ता है, वो भी सही ओरिएंटेशन में और काफी जोर से, मतलब पर्याप्त एनर्जी के साथ, तभी रिएक्शन होगा।
ओके।
दूसरा जो थोड़ा ज्यादा रिफाइंड है वो है संक्रमण अवस्था सिद्धांत, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। ये कहता है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के बीच एक बहुत ही कम समय के लिए एक हाई एनर्जी अनस्टेबल संक्रमण अवस्था या ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ये उस पहाड़ी की चोटी की तरह है। और अंत में एटकिंस उत्प्रेरण की बात करते हैं। उत्प्रेरक या कैटलिस्ट वो चीजें हैं जो रिएक्शन की रफ्तार बढ़ा देती हैं, पर खुद रिएक्शन में खर्च नहीं होती।
वो कैसे करती हैं ये?
वो एक्टिवेशन एनर्जी की पहाड़ी को कम करने के लिए एक नया आसान रास्ता बना देती हैं। जैसे पहाड़ी पे चढ़ने की बजाय आपने एक सुरंग खोद दी हो। हमारे शरीर में जो एंजाइम होते हैं वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट ही हैं। तो इस पूरी गहरी चर्चा को अगर समेटें तो कुछ बड़े संदेश या थीम उभर कर आते हैं। पहला और शायद सबसे जरूरी, भौतिक नियमों की सार्वभौमिकता। मतलब केमिस्ट्री कोई अलग थलग जादू नहीं है, ये उन्हीं बुनियादी फंडामेंटल फिजिकल लॉज का हिस्सा है जो पूरे ब्रह्मांड पर लागू होते हैं। सब कुछ उन्हीं नियमों से बंधा है।
दूसरा बड़ा आइडिया जो मुझे लगता है वो है ऊर्जा और एंट्रोपी का खेल। दुनिया में हर बदलाव जो अपने आप होता है स्पॉन्टेनियसली, वो दो ताकतों के बीच एक तरह की खींचतान का नतीजा है। सिस्टम की कम ऊर्जा में जाने की चाहत, जिसे एंथैल्पी देखती है, और ऊर्जा और पदार्थ को ज्यादा फैलाने या बिखेरने की चाहत, जिसे एंट्रोपी देखती है। और गिब्स मुक्त ऊर्जा डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच टी डेल्टा एस, इसी खींचतान का गणितीय रूप है। जैसे बाजार में मोल भाव होता है ना?
हाँ बिल्कुल, प्रकृति में ऊर्जा और एंट्रोपी के बीच मूलभाव चलता रहता है। तीसरा, क्वांटम मैकेनिक्स ही नींव है। हम आज अणुओं को जैसा समझते हैं, उनका आकार कैसा है, उनके बीच बंधन कैसे बनते हैं, वो रिएक्ट कैसे करते हैं, ये सब कुछ क्वांटम मैकेनिक्स की देन है। परमाणुओं और अणुओं की दुनिया हमारे बड़े पैमाने की दुनिया के नियमों से नहीं चलती, उसके अपने क्वांटम नियम है।
चौथा, छोटे से बड़े का रिश्ता, माइक्रो से मैक्रो का कनेक्शन। ये किताब लगातार दिखाती है कि कैसे एक एक परमाणु और अणु का व्यवहार, जिसे क्वांटम मैकेनिक्स समझाती है, मिलकर उन बड़े गुणों को जन्म देता है जिन्हें हम अपनी दुनिया में देख और नाप सकते हैं, जैसे तापमान, दबाव, जिसे थर्मोडायनेमिक्स समझाती है। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स नाम का एक पूरा फील्ड है जो इन दोनों दुनियाओं के बीच पुल का काम करता है।
हाँ, वो दिखाता है कि कैसे अरबों खरबों अणुओं की औसत हरकत से तापमान जैसी प्रॉपर्टी उभरती है। और पांचवा, एक बहुत बहुत जरूरी सबक, संभव होने का मतलब तेज होना नहीं है। स्पॉन्टेनिटी डज नॉट इम्प्लाई स्पीड।
हाँ, ये बहुत क्रूशल पॉइंट है।
हाँ, थर्मोडायनामिक्स हमें सिर्फ ये बताती है कि क्या कोई रिएक्शन हो सकता है, लेकिन वो ये बिल्कुल नहीं बताती कि वो कितनी तेजी से होगा। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है हीरा। थर्मोडायनामिक्स कहती है कि हीरे को ग्रेफाइट में बदल जाना चाहिए, क्योंकि ग्रेफाइट ज्यादा स्टेबल है, उसका डेल्टा जी कम है। पर क्या ऐसा होता है? नहीं
नहीं तो
सदियां लग जाती हैं।
हाँ।
क्योंकि ये प्रोसेस अविश्वसनीय रूप से धीमा है, इसकी काइनेटिक्स बहुत स्लो है, एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो किसी बदलाव को पूरी तरह समझने के लिए हमें मंजिल क्या संभव है, थर्मोडायनामिक्स, और सफर की रफ्तार कितनी तेजी से, काइनेटिक्स, दोनों पता होनी चाहिए।
एटकिंस की किताब में वैसे सीधे सीधे यादगार कोट्स शायद कम हो, क्योंकि ये आखिर एक टेक्स्ट बुक है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे मूल विचार हैं, कोर आइडियाज, जो बार बार आते हैं और दिमाग में बैठ जाते हैं।
जैसे एंट्रोपी वाला विचार, उसे सिर्फ अव्यवस्था नहीं बल्कि ऊर्जा के फैलने की माप समझना। ये फैलाव ही हर बदलाव के पीछे का इंजन है। ये सोचना कि हर चीज फैलना चाहती है, ऊर्जा बिखरना चाहती है, ये दुनिया को देखने का एक, मुझे लगता है, अलग नजरिया देता है।
और क्वांटम मैकेनिक्स का वो आइडिया, वेव फंक्शन में कर्ण की सारी जानकारी है पर वो उसका पता नहीं बल्कि उसके पाए जाने की संभावना का नक्शा है। ये जो अनिश्चितता से संभावना की ओर शिफ्ट है, वो सिर्फ विज्ञान ही नहीं, शायद हमारे सोचने के तरीके को भी बदलता है। हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है।
बिल्कुल। और गिब्स मुक्त ऊर्जा जी के बारे में सोचना, स्थिर तापमान और दबाव पर डेल्टा जी ही अंतिम फैसला सुनाता है कि कोई प्रक्रिया अपने आप होगी या नहीं। ये केमिस्ट के लिए एक सुपर पावर जैसा है। लैब में कोई नया रिएक्शन ट्राई करने से पहले या इंडस्ट्री में कोई प्रोसेस डिजाइन करने से पहले वो डेल्टा जी कैलकुलेट करके अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई ये काम करेगा भी या नहीं, या हमें एनर्जी देनी पड़ेगी।
और वो फर्क जो आपने पहले बताया था, रिएक्शन की रफ्तार थर्मोडायनामिक्स तय नहीं करती, वो उसके रास्ते, मैकेनिज्म और एक्टिवेशन एनर्जी पर निर्भर करती है। ये याद दिलाता है कि सिर्फ मंजिल देखना काफी नहीं, रास्ते की मुश्किलों यानी काइनेटिक्स को भी समझना बहुत जरूरी है। अब बड़ा सवाल यह है कि इन सब भारी भरकम सिद्धांतों का हमारी असली जिंदगी में क्या काम, कहां इस्तेमाल होते हैं?
अरे पूछिए, कहां काम नहीं आते। इंजीनियरिंग और ऊर्जा को ही लें, गाड़ी का इंजन कैसे काम करता है, फ्रिज कैसे ठंडा करता है, बैटरी कैसे बिजली देती है, सोलर सेल कैसे धूप को बिजली में बदलते हैं, इन सब के पीछे थर्मोडायनामिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के सिद्धांत हैं। पावर प्लांट की एफिशिएंसी बढ़ानी हो या ज्यादा चलने वाली बैटरी बनानी हो,
सब यहीं से शुरू होता है।
हाँ, और दवाओं और बायोलॉजी की दुनिया तो इनसे भरी पड़ी है। कभी सोचा है MRI मशीन कैसे शरीर के अंदर की इतनी डिटेल्ड तस्वीरें ले लेती है? उसके पीछे क्वांटम मैकेनिक्स का जादू है, परमाणुओं के नाभिक का स्पिन बिहेवियर। कोई दवा शरीर में कितनी जल्दी असर करेगी, कितनी देर तक रहेगी, जिसे फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं, ये पूरी तरह केमिकल काइनेटिक्स पर निर्भर करता है। हमारे शरीर में हर पल हजारों रिएक्शन होते रहते हैं, जिन्हें एंजाइम नाम के बायोलॉजिकल कैटलिस्ट चलाते हैं। उन एंजाइम्स की स्टडी यानी एंजाइम काइनेटिक्स नई दवाएं बनाने और बीमारियों को समझने के लिए बेहद जरूरी है।
मटेरियल साइंस यानी नई चीजें बनाने का विज्ञान, वो तो पूरी तरह फिजिकल केमिस्ट्री पर टिका है। कोई चीज बिजली की अच्छी सुचालक कंडक्टर क्यों है, कोई कुचालक इंसुलेटर क्यों, और सेमीकंडक्टर जैसे सिलिकन जो हमारे सारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर चिप्स में लगते हैं कैसे काम करते हैं, ये सब क्वांटम मैकेनिक्स हमें समझाती है। इसी ज्ञान से हम मजबूत प्लास्टिक, सुपर कंडक्टर या खास गुणों वाले नए नए मटीरियल डिजाइन कर पाते हैं।
और पर्यावरण विज्ञान में भी इसका रोल कम नहीं। हवा में ओजोन परत कैसे बनती है, कैसे बिगड़ती है, समुद्र कार्बन डाइऑक्साइड सोखकर कैसे ज्यादा एसिडिक हो रहे हैं, गाड़ियों के धुएं को साफ करने वाले कैटलेटिक कन्वर्टर कैसे काम करते हैं, इन सब प्रक्रियाओं को समझने और उनका हल निकालने के लिए फिजिकल केमिस्ट्री की गहरी समझ जरूरी है।
यहाँ तक कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी इसके उदाहरण भरे पड़े हैं। सर्दियों में सड़क पर नमक छिड़कने से बर्फ क्यों पिघल जाती है, ये थर्मोडायनामिक्स का एक गुण है जिसे फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कहते हैं। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है?
हाँ, ये तो सब घरों में होता है।
क्योंकि दबाव बढ़ने से पानी ज्यादा तापमान पर उबलता है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। ये सब फिजिकल केमिस्ट्री के ही खेल हैं जो हम रोज देखते हैं, बस ध्यान नहीं देते।
तो इस पूरी ज्ञान गोष्ठी से, इस चर्चा से क्या निचोड़ निकलता है? मेरे लिए सबसे बड़ी सीख ये है कि ये दुनिया, ये रासायनिक ब्रह्मांड जैसा दिखता है उतना बेतरतीब या मनमाना नहीं है। ये कुछ बहुत ही सुंदर, सुरुचिपूर्ण और शक्तिशाली भौतिक नियमों से चलता है। एटकिंस की किताब उन नियमों को समझने के औजार हमें देती है। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति के छिपे हुए कोड को क्रैक करने की चाबी मिल गई हो।
और मेरे लिए सबसे बड़ा आहा मोमेंट या सबसे बड़ी टेक अवे ये रही कि फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ने के बाद केमिस्ट्री सिर्फ ये याद करने का विषय नहीं रह जाता कि क्या होता है, बल्कि आप ये समझने लगते हैं कि क्यों और कैसे होना चाहिए। आप प्रिंसिपल्स के आधार पर भविष्यवाणी करना सीखते हैं। ये रटने से समझने की तरफ एक बहुत बड़ा, बहुत जरूरी कदम है। आप अनगिनत रिएक्शंस को याद करने के बोझ से मुक्त होकर मूल सिद्धांतों से सोचना सीखते हैं।
बिल्कुल, और ये किताब केमिस्ट्री की अलग अलग शाखाओं जैसे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, एनालिटिकल, इनके बीच की जो आर्टिफिशियल दीवारें हैं उन्हें भी गिरा देती है। ये दिखाती है कि वो सब एक ही बुनियाद यानी फिजिकल प्रिंसिपल्स पर खड़ी हैं। ये वाकई सिखाती है कि प्रकृति की भाषा एक तरह से गणित है, और उस भाषा को समझकर हम दुनिया को ज्यादा गहराई से जान सकते हैं, ज्यादा अप्रिशिएट कर सकते हैं।
संक्षेप में कहें तो पीटर एटकिंस की फिजिकल केमिस्ट्री सिर्फ एक टेक्स्ट बुक नहीं है, ये वैज्ञानिक सोच का, वैज्ञानिक शिक्षा का एक मील का पत्थर है। ये पदार्थ और उसके बदलावों को समझने का एक पूरा तार्किक और गहरा संतोषजनक बौद्धिक ढांचा देती है। यह आपको सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री के फैक्ट्स नहीं सिखाती, यह आपको एक फिजिकल केमिस्ट की तरह सोचना सिखाती है, लॉजिक से नाप तोल कर और हमेशा बुनियादी सिद्धांतों से जुड़कर। मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।